चलिए क्लास शुरू करते हैं। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو قلم نے حدیث نمبر 75 کے بارے میں تفصیلی گفتگو کری تھی۔ کسی کو اگر کوئی سوال ہو اس موضوع کے متعلق تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دو ہی حدیثیں ابھی ہماری رہ گئی ہیں، دیکھیں ان کو مکمل اگر آج کر لیتے ہیں تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ فقہ کی کتاب کو دوبارہ شروع کریں گے۔ پچھلی جو حدیث تھی جو جس کے بارے میں کل ایک مفصل گفتگو کری تھی، تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو میرے پاس ایک سوال ہے آپ کے لیے۔ تو وہ سوال یہ ہے، یعنی لیٹ می فریز اٹ، ٹرائی ٹو فریز اٹ پراپرلی، کہ کل ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ قوم اور اس قوم کے علماء، ان دونوں کی آپس میں ریلیشن شپ کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمثیل کیا دی تھی، ایک انسانی وجود کی دی تھی کہ انسانی وجود کے اندر جو علماء ہوتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ سر کی مانند ہوتی ہے، اور جو باقی قوم ہوتی ہے جن کے پاس کے تفصیلی علوم نہیں ہوتے تو ان کی مثال جسم کی مانند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی دشمن کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اپنا غلام بنانا چاہتا ہے یا ان کو مارنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اوپر وار کرے، ٹھیک ہے، یعنی عوام کے اوپر وار کرے، مختلف طریقوں سے اس کو گرانے کی کوشش کرے، ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے یا ویسے ہی سینے کے اوپر وار کرے۔ تو اس طریقے سے وہ قوم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ سر کو کاٹ دے، ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر کی اہمیت ہوتی کیوں ہے، کیونکہ سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سر کو کاٹ دے اور اس کو جدا کر دے باقی جسم سے۔ تو گویا کہ ہماری اس مثال کے اندر اس نے قوم کو جو ہے، یعنی عوام الناس کو جو ہے، وہ اس کے علماء سے ڈسکنیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا، جدا کر دیا، دور کر دیا۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک انسانی جسم جو ہے نا، اگر اس کا سر اس سے الگ ہو جائے تو پھر اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، حالانکہ وہ جسم ایون اگر پورا کا پورا صحیح سالم بھی ہو، بظاہر اس کے اندر کوئی یعنی ہاتھ کٹا ہوا نہ ہو، پیر کٹا ہوا نہ ہو، کوئی زخم نہ آئے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی اپنے اس پورے سالم وجود کے باوجود صرف سر کے جدا ہو جانے کی وجہ سے اب وہ جسم بیکار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ایک کارٹون کی مثال بھی دی تھی کہ چکن ود آؤٹ اے ہیڈ، یہ ایک محاورہ بھی انگریزی زبان کے اندر مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی یعنی معاشرے کے اندر جو امامت کے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اس کے سورٹ آف لیڈرز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بڑے کہلاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ جو ہے نا علم والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی بھی جہلا جو ہے وہ آگے نہیں ہوتے، صحیح ہے؟ چاہے وہ علم والے کسی بھی لیول کے علم والے ہوں، اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو سائنس میں جو عالم ہوتے ہیں تو وہی دوسرے لوگوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی آپ فیلڈ کو لے رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو قوم کے اسکالرز ہوتے ہیں نا، وہ اسکالرز ہی جو ہوتے ہیں وہ اس قوم کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم نے تمثیل دی تھی کل، اس کے ذریعے سے علماء کی اہمیت کو معاشرے کے اندر سمجھایا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کل ایک اور بھی بات ہوئی تھی کہ جو امیر ہوتا ہے قوم کا، لیڈر جو ہوتا ہے، ठीक है, जिसको के हाकिम कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, बादशाह कहते हैं, या उसको आप खलीफा कह सकते हैं, जो भी उसके लिए नाम आप तजवीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उलमा, अच्छा कल हमने ये बात भी समझाई थी कि उलमा एक अलग चीज़ होते हैं, एक अलग कैटेगरी होती है, और ये जो हाकिम होता है, सुल्तान होता है, ये एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये दोनों बातें जो है ना वो एक शख्सियत के अंदर उमूमी तौर पर मुश्तरक नहीं होती हैं। ठीक है, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला कोई ऐसी शख्सियत अता फरमा दे किसी कौम को, ठीक है, बतौर इनाम के, नेमत के। ठीक है, जैसे नबी नबी जो आते हैं तो नबी के अंदर जो है ना वो सारी यानी उमूमी तौर पर ये सारी खसूसियात इकट्ठी होती हैं, मुश्तरक होती हैं एक ही शख्सियत के अंदर। ठीक है, तो फिर ये कहा था कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो ये हमने आपको मिसाल दी कि उलमा की हैसियत जो है वो हेड की जैसी होती है, ठीक है, सर की मानिंद होती है, तो फिर ये जो हाकिम होता है ना, इस हाकिम के लिए आप क्या तमसील देना चाहेंगे, क्या तमसील दे सकते हैं हाकिम की, फिर क्या हैसियत होती है? अगर सर की हैसियत उलमा को आपने दे दी, तो ये वाला जो पॉलिटिकल लीडर होता है, सियासी लीडर होता है, खलीफा होता है या अमीर होता है, इसकी फिर कहाँ जगह बनती है इंसान के वजूद के अंदर? कोई कोई इसका जवाब देने की कोशिश करेगा? नर्व्स? जी माशाल्लाह, आपने अपनी फील्ड के हिसाब से जवाब दिया है। नहीं, नर्व्स तो खैर बहुत सारी हो गई ना, यानी वो तो पूरे जिस्म के अंदर फैली हुई होती हैं, तो वो तो गोया कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए, कनेक्टिंग बॉडी विद द ब्रेन। नहीं, लीडर तो एक ही होता है ना, लीडर जो है वो कनेक्टिंग बॉडी विद द ब्रेन वाला मामला जो है वो बाजू की हैसियत रखता है, जोरे बाजू। चले, आपने एक 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 अच्छी तमसील दी, ठीक है, चले कोई और इसके अलावा, यानी जोरे बाजू से इन्होंने फिर इसकी तमसील निकाली, क्योंकि लीडर के पास पावर होती है, और पावर से जो है फिर वो अपने दुश्मन से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। चले, ठीक है, अच्छी तमसील है। कोई और अगर कुछ और कहना चाहे तो आप कहने, वरना फिर मेरे जहन में जो ब्रेन जो है वो तो हेड के अंदर होता है ना, तो हमने तो ब्रेन को बेसिकली उलमा से तशबीह दी है, क्योंकि हेड जो होता है वो हेड की अहमियत ही ब्रेन की वजह से होती है। जिस्म के अंदर एक और भी चीज होती है, ठीक है, जो कि बड़ी कलीदी हैसियत रखती है। जी माशाल्लाह, ठीक है, तो हिदायत साहब ने जो जवाब लिखा है ना, वो तमसील समझने की, ये क्योंकि किताब में लिखी हुई चीज नहीं है, गोया कि इस आजिज के दिल में आई और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लें कि मेरा जो जवाब था या मेरे ध्यान में जो बात थी ना, तो वो हार्ट ही थी जो कि हिदायत साहब ने फरमाया, और अमीन साहब ने जो रूह की बात फरमाई, तो रूह भी जो है वो आपको पहले बता चुके हैं कि कल्ब जो है वो रूही का सदर मुकाम होता है, वरना रूह तो पूरे पूरे जिस्म के अंदर मौजूद होती है, हर जगह ही रूह मौजूद होती है। तो जो कल्ब होता है ना इंसान का, दिल, ये दिल जो है ना, ये एक ऐसी चीज होती है हमारे वजूद के अंदर जो कि ब्रेन को भी कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, अब ये आम साइंसी नॉलेज के तहत ये बात हमें समझ में नहीं आती, ठीक है, लेकिन साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, जैसे जैसे मजीद इनकी डिस्कवरीज आ रही है ना, तो इनका भी फोकस जो है वो ब्रेन से आगे बढ़ करके हार्ट तक पहुंचना शुरू हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, इवन साइंस इज सेइंग द सेम थिंग नाउ। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें बात बताई, जो हदीस नबवी से साबित होती है और जो वैसे हमारे दीनी उलूम से साबित होती है, वो क्या है कि असल जो बादशाह होता है ना इंसान के वजूद के अंदर, वो बादशाह जो है वो इंसान का दिल होता है। ठीक है, बादशाह जो है वो दिल होता है। तो इससे क्या पता लगा कि अगरचे के उलमा जो है वो दिमाग की मानिंद तो होते हैं, लेकिन इवन दिमाग भी जो है ना वो इसके तहत ही होते हैं, हार्ट ही के तहत होते हैं। ठीक है, दिल ही के तहत होते हैं, कल्ब ही के तहत होते हैं। लेकिन कल्ब को अगर हम पिछली हदीसों में हमने बात डिस्कस करी है कि कल्ब एक ऐसी चीज होती है कि कल्ब जो होता है वो या तो बीमार हो जाता है या ये सेहतमंद होता है। ठीक है, बीमार भी हो सकता है, सेहतमंद भी हो सकता है। ठीक है, तो बीमार कल्ब की मिसाल कैसे हुई कि हर कौम का एक बादशाह होता है, ठीक है, हर कौम का एक बादशाह होता है, चाहे वो कौम जो है वो कितनी बुरी हालत में क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई लीडर होता है। लेकिन लीडर जो है ना वो बीमार हो सकता है, ठीक है, बीमार हो सकता है, और वो बीमार लीडर कैसा होता है कि फिर वो लीडर तो होता है लेकिन वो कौम की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि उल्टा जो है ना वो अपने जानते हुए वो कौम की भलाई करता है लेकिन उल्टा नुकसान कर रहा होता है अपनी कौम का, ठीक है, उनको गलत रास्ते पे चला रहा होता है, उनको जो है वो गैर कौम का मोहताज बना रहा होता है और उनके। तो इसी तरीके से इंसान का कल्ब जो है ना जब ये बीमार होता है ना तो फिर होता तो ये बादशाह ही है, ठीक है, ये इसकी बादशाहत कहीं नहीं चली जाती, होता तो ये बादशाह ही है लेकिन ये एक बीमार बादशाह होता है, ये बाकी जो वजूद है ना उसकी भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बादशाह जो है वो सेहतमंद हो, ठीक है, और वाकई इन कंट्रोल हो, सेहतमंद होगा तभी तो इन कंट्रोल होगा वाकई जैसा कि इसको होना चाहिए था, तो फिर जो है ना ये बाकी वजूद के भलाई के लिए काम करता है, ठीक है, अला वहियल कल्ब, ठीक है, कि कल्ब अगर अच्छा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कल्ब जो है वो इजा सलहत सलहत जसद कुल्लुहू व इजा फसदत फसदत जसद जसद कुल्लुहू, ठीक है, अगर ये अच्छा होगा ना तो पूरा का पूरा जसद जो है, पूरा का पूरा वजूद जो है वो अच्छा होगा, और अगर ये बुरा हो जाएगा तो पूरा का पूरा वजूद जो है वो बुरा हो जाएगा, ठीक है, अला वही कल्ब आखिर में फरमाया। तो इस तरीके से जो है ना एक तो ये पता लगता है कि कल्ब जो है वो जिस तरह से एक कलीदी हैसियत रखता है, ही इज द लीडर, ही इज द बादशाह, ठीक है, तो बाकी सब जो है ना वो उसके पीछे चल रहे होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से कुछ हमारे जो नौजवान लोग हैं ना इस चीज को फिर इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं या इस रास्ते पर भी डाल सकते हैं इस डिस्कशन को, कि जब भी तो हम कहते हैं कि भाई तब्दीली ऊपर से आती है, जब भी तो हम कहते हैं तब्दीली ऊपर से आती है, तो ये खामखा तुम लोग जो है वो इसलाह की जो चक्करों में पड़े हुए हो कि पता नहीं इसलाह कब होगी और कब जो है वो तब्दीली नीचे से आएगी, जब भी तो हम कहते हैं कि खिलाफत लेकर के आओ, खिलाफत लेकर आओ, खिलाफत लेकर के आओ, हुकूमत को हटाओ हमें लेकर के आओ, राइट, हुकूमत हटाओ हम हुकूमत में आएंगे तब जो है सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, तो वो इस बहस को ना फिर उस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। तो इसका हम ये जवाब देंगे कि ये जो कल्ब वाला मामला है ना, इस कल्ब के मामले पे हम पहले काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि कल्ब की जो कैफियात होती हैं, ठीक है, ये कल्ब की कैफियात जो होती हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है, इंसान जो है ना वो यानी जब नेकी का काम करता है अपने अपने यानी अपने जवारे आजा और जवारे को फोर्स करता है, ठीक है, अपने अजा और जवारे को फोर्स करता है नीकी के काम करने के ऊपर और गुनाहों से बचने के ऊपर, तो इसके नतीजे में कल्ब के अंदर कैफियात पैदा होती हैं, और ये कैफियात जो होती है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम होता है, ठीक है, कल्ब के बारे में हमने पिछली क्लासों के अंदर एक मिसाल भी दी थी कि एक आर्टिस्ट ने एक कल्ब की यानी दिल की तस्वीर बनाई और उस तस्वीर के अंदर उसने एक छोटा सा दरवाजा भी बनाया, लेकिन उस दरवाजे का कोई हैंडल नहीं था, तो पूछने वाले ने पूछा कि भाई इस दरवाजे का कोई हैंडल आपने क्यों नहीं बनाया, तो उसने जवाब दिया क्योंकि इसका हैंडल जो होता है ना यानी कल्ब का जो दरवाजा होता है वो बाहर से नहीं खुलता, वो अंदर से खुलता है, यानी आप इसको फोर्स करके नहीं खोल सकते, ठीक है, बल्कि इसका जो मालिक है ना जो इस कल्ब के अंदर रहता है वो इसको खोलता है, यानी इसके अंदर जो तब्दीलियां लाता है वो इसका मालिक लेकर के आता है, तो ये जो कल्ब होता है ना ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में होता है, ठीक है, वो इसका मालिक होता है इंसान का कल्ब, ठीक है, और हदीस मुबारक में क्या आता है कि युकल्लिबुहु कैफ यशा, वो इसको फेर देता है जैसे वो चाहता है, अल्लाह ताला जैसे चाहता है, तो भाई अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि किसी इंसान को सालिम कल्ब अता फरमा दे, या अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि किसी इंसान को जो है वो गैर सालिम कल्ब अता फरमा दे, वो इसलिए चाहता है कि जब कोई इंसान मेहनत करता है ना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने सारी चीजें खोली हुई है, कुरान किताब हिदायत है, ये सारी चीजें हमें बताई हुई है कुरान के अंदर, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो जद्दोजहद करता है हमारे रास्ते में हम उसको उसके यानी उसको हिदायत देते हैं अपने रास्ते में, ठीक है, यानी जद्दोजहद इंसान करता है उसका नफ्स करता है, ठीक है, उसका जिस्म करता है, और इसके नतीजे में अल्लाह ताला जो है ना उसके कल्ब के अंदर अपनी मोहब्बत की कैफियात पैदा करते हैं, ठीक है, वो सुन्नत के ऊपर अमल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करता है, ठीक है, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर के कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि कह दीजिए इन अपने सहाबा से कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा, तुम मोहब्बत करो अल्लाह से, फत्तबिउनी, मेरी इत्तेबा करो, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे वैसे करते चले जाओ, यानी मेरे स्टेप में स्टेप मिला करके चलो, मेरे नक्शे कदम के ऊपर चलो, मेरे तरीके से जिंदगी गुजारो, घर में मेरे तरीके से रहो अपनी बीवी के साथ, जिस तरह मैं अपनी बीवियों के साथ रहता हूँ, जिस तरह मैं मुआशरे में रहता हूँ वैसे रहना शुरू कर दो, जैसे मैं खाता हूँ वैसे खाओ, जैसे मैं पीता हूँ वैसे पियो, जैसे मैं सोता हूँ वैसे सो, जैसे मैं ओढ़ता हूँ पहनता हूँ वैसे तुम पहनो ओढ़ो, तो फिर क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तो इसके नतीजे में तुम्हारे कल्ब में खुद ब खुद अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह किसी कल्ब से मोहब्बत, किसी बंदे से मोहब्बत करे और वो अल्लाह से मोहब्बत ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह मोहब्बत करेगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा कि कल्ब के अंदर मोहब्बत की कैफियात पैदा होंगी। ये सारी बहस मैं क्यों कर रहा हूं, ये इस बात को इस तरीके से आपके जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लीडर होता है ना वो अल्लाह की देन होता है, उस लीडर को हम फोर्स नहीं कर सकते। कल्ब के अंदर जो कैफियत होती हैं, कल्ब के अंदर जो जिंदगी आती है, ठीक है, उसको जो उसके अंदर मजबूती आती है, वो जो है वो अपनी बुराई को छोड़ करके, अपनी बीमारी को छोड़ करके सेहतमंद होता है, ठीक है, रूहानी तौर पर सेहतमंद होता है, ये अल्लाह का तोहफा होता है। तो एक कौम को भी ये तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है जब वो नेकी का काम करते हैं, अपने अकल को सलीम बना करके, सलीम यानी जिसको कहते हैं ना अकल की सलीमी के ऊपर अमल करते हैं, ठीक है। अकल की सलीमी का क्या मतलब है कि जो दिमाग है, जिसको कि हमने उलमा से तशबीह दी, ठीक है, तो दिमाग जो होता है वो उलमा से तशबीह दी है, तो उलमा जो होते हैं वो उलमाए हक भी होते हैं और उलमाए बातिल भी होते हैं, ठीक है। उलमाए बातिल के कहने पर अमल नहीं करते वो लोग, बल्कि उलमाए हक के कहने पर अमल करते हैं, यानी अपने अकल की जो सलीम हिस्सा होता है ना, जो ब्रेन का हिस्सा जो होता है, वो अनडैमेज्ड जो 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 हिस्सा होता है, उस अनडैमेज्ड हिस्से को फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनसे पूछ करके चलते हैं कि ये बताओ कि अल्लाह ताला ने वही में क्या नाजर फरमाया, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, हमें बताओ, हम उस पर अमल करेंगे। जब इंसान, जब किसी कौम के अफराद इस तरीके से अमल करते हैं ना, तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला उनको इनाम देता है कि उनको एक लीडर अता फरमाता है। ये लीडर जो होता है ना, फिर उनको उनकी जिंदगी की मुश्किलात से बाहर निकालता है, उनके दुश्मनों के ऊपर इनको फतह दिलवाता है, इनको लीड करता है, और इनकी गुलामी की जिंदगी से, इनकी जो है वो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से इनको लेकर के बाहर निकलता है। ये काम लीडर करता है, ठीक है, और ये लीडर जो है वो अल्लाह देते हैं कौम को। तो हमारा काम जो है ना करने का, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, वो ये है कि अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए, और इस्लाह के लिए गाइडेंस जो है वो हमें अपने उलमाए हक से लेनी चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से जब हम मेहनत करते रहेंगे ना, तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला हमें इस जिल्लत और रुसवाई की जो जिंदगी है इससे निजात अता फरमाएगा, ठीक है। और अगर जिंदगी में हमें ऐसी शक्ल देखने को ना भी मिली, तो फिर अल्लाह तो इंडिविजुअली जो है वो अल्लाह ताला हमें यकीनन कामयाब फरमा देगा, और कलेक्टिवली कामयाबी के लिए जो है वो अल्लाह ताला के पास, जब उसका यानी जब ये मामला होगा कि कौम के इतने अफराद जो है उन्होंने अपनी इसलाह कर ली है, वो जो है मानने वाले बन गए, तो वो जब भी वो वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उसको लीडर अता फरमा देगा, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। हमें तो अब क्या कहते हैं, हमें तो अपनी उल्टी सीधी करनी है, अपनी उल्टी को सीधा करना है, ठीक है, अपनी कब्र का कि हमने फिक्र करनी है, हमें ये गर्ज होनी तो चाहिए, फिक्र की गर्ज, फिक्र की हद तक, कंसर्न की हद तक तो हमें पूरी उम्मत की फिक्र है, ठीक है, लेकिन हम जिम्मेदार जो है ना वो अपने रईयत के हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा अपना वजूद आता है, और उसके बाद हमारी औलाद का, हमारे अहल वयाल का, और जिसको भी अल्लाह ताला ने हमारी रईयत के अंदर रखा है। अगर बैतुल मुकद्दस, आजकल बहुत चल रहा है ना ये बैतुल मुकद्दस में ये हो गया और वो हो गया, ठीक है, अगर बैतुल मुकद्दस आजाद हो गया, ठीक है, इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा, लेकिन अगर हो गया आजाद, ठीक है, हमारी जिंदगी में हुआ या बाद में हुआ, मुसलमानों के पास आ गया, लेकिन हमारे लिए जहन्नुम का फैसला हो गया तो क्या फायदा हुआ? मुसलमान उम्मत को तो बहुत फायदा हो गया, मुझे तो फायदा नहीं हुआ ना इससे कुछ भी। बैतुल मुकद्दस आजाद हो गया जी, मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया जी, मुझे उठा करके जहन्नुम में फेंक दिया। क्यों? इसलिए कि मैं गुनाहों से निकल ही नहीं पाया अपनी जिंदगी में, मैंने गुनाहों को गुनाह समझा ही नहीं, मैंने तौबा करी ही नहीं, मैंने अपने ईमान की हिफाजत करी ही नहीं। ठीक है, तो मेरा खात्मा नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमान के बगैर हो गया, तो मुझे क्या फायदा हुआ बैतुल मुकद्दस के आजाद होने से? मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे फायदे के लिए हमने मेहनत नहीं करनी है कि जिससे कि हम जहन्नुम में चले जाएं। और माशाल्लाह गोया इसकी मिसाल कैसी हुई कि अल्लाह ताला ने हमें इस्तेमाल तो कर लिया, ठीक है, किसी नेक काम के लिए, लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, हमें उठा करके अल्लाह ताला ने जहन्नुम के गार्बेज डंप में फेंक दिया। इसकी मिसाल क्या देते हैं? जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, ठीक है, आजकल तो शायद इस तरह की सिरिंजेस होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन सिरिंज होती है जिसके अंदर इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन जो होता है वो बहुत फायदेमंद चीज होती है, मरीज को लगाया जाता है, मरीज जो है वो उसके सबब से सेहतमंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद सिरिंज के साथ क्या किया जाता है? उस सिरिंज को जो है वो कोई तमगा तो नहीं पहनाया जाता ना, सिरिंज को जो है वो बचा करके अपने घर के शोकेस में तो नहीं रखा जाता। क्या किया जाता है? सिरिंज को उठा करके डस्टबिन की नजर कर दिया जाता है, और कोई उसको फिर याद ही नहीं करता कि हाँ इस सिरिंज के अंदर वो दवा थी जिस दवा से मेरे इस रिश्तेदार का इलाज हो गया। किसी की याददाश्त में वो सिरिंज नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा मामला हमारे साथ नहीं हो, हम इसके लिए तैयार नहीं है कि इधर तो बैतुल मुकद्दस आजाद करने के लिए मेहनतें कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है वो ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो और ऐसी जो है वो नाफरमानी कर दें, ऐसी जो है वो अल्लाह वालों के साथ जो है वो बेअदबी और ऐसी गुस्ताखी कर दें कि अल्लाह ताला हमें उठा करके जहन्नुम के अंदर डाल दें। ठीक है, ये नहीं है कि जी हमने चूंकि उसके लिए मेहनत करी थी तो इस वजह से अब अल्लाह ताला के ऊपर वाजिब हो गया है कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत में डालना है। ठीक है, तो ये जो गलती है ना, इसके ऊपर शैतान ने हमें लगाया हुआ है कि हम जो अपने करने का काम है उसको छोड़ करके ना, जो अपने करने का काम नहीं होता है उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और अपने करने के काम से बिल्कुल ही गाफिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मिसाल को इंशाल्लाह हम याद रखें कि उलमा की हैसियत जो होती है वो दिमाग की जैसे होती है, तो इससे जो है वो कौम को कभी भी काटने की गलती ना करें, कभी भी कोई ऐसा फेल ना करें, कोई ऐसा मैसेज आगे फॉरवर्ड ना करें कि जिसके अंदर जो है वो उलमा के लिए बदगुमानी का पहलू हो, कभी भी ऐसा काम ना करें। ठीक है, आपके करने से कुछ होगा नहीं, वैसे भी होना वही है जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन ये गुनाह जो है ना, जो कि इंतहाई यानी दूर रस किस्म का गुनाह है, ये गुनाह आपके नाम अमाल के अंदर लिख दिया जाएगा। ठीक है, और इसका फिर जो खुमियाजा है ना वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी डिस्कशन असल में इस मकसद से थी। आगे हदीस पढ़ते हैं, हदीस नंबर 76 के जिसका के मजमून है कि सबसे बेहतरीन जिक्र कलमा तौहीद और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इसकी इबारत नीचे लिखी हुई है कि अन जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लफ्जी तर्जुमा बा मुहावरा तर्जुमा बल्कि ये है कि सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है, पहला लफ्ज है इसका अफ़ज़लु, इसका कोई सीगा बता सकता है? टेंस सीगा क्या है इसका? अफ़ज़लु जी, तफदील खाली काफी नहीं है, इसम तफदील बताएं। ठीक है, इसम तफदील इसका सीगा है। तो है भी ये लफ्ज भी वही तफजील वाला ही है, यानी फजीलत, तो ज्यादा फजीलत रखने वाली चीज या ज्यादा अफजल चीज, उर्दू में भी हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा अफजल चीज जो है वो जिक्र में से अफजल जिक्री, तो है ये इसम तब्दील, और इसके बाद जो लफ्ज आ रहा है वो इसका मुवाफ इलेही ही बन रहा है, क्योंकि इसम तब्दील के इस्तेमाल के आपको तीन तरीके बताए थे। एक तरीका ये है कि इसम तब्दील जो है वो मुवाफ बने, और जिस चीज से वो फजीलत बयान की जा रही है वो चीज जो है ना, यानी वो लफ्ज जो है मुवाफ इलेही ही बन जाए। ये एक तरीका होता है इस्तेमाल का। और दूसरा तरीका ये होता है कि इसम तब्दील के बाद जो है वो मिन का लफ्ज लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी कह सकते थे कि अफजलु मिनज जिक्री, ठीक है, कि जिक्र में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र ये है। और तीसरा जो तरीका था वो इस वक्त में नहीं आ रहा, खैर आप लोगों को पढ़ाया था वो किताबों में लिखा हुआ है। बहरहाल तो तीन तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है मुजाफ मुजाफ इलैहि वाला। तो जिक्र में से अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु इसकी तफसील इंशाल्लाह तशरीह में देखेंगे। वह हर्फ अतफ हो गया, और अफजलु दुआई यानी दुआ में से अफजल सबसे ज्यादा फजीलत वाली दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ही, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना या पढ़ना या कहना, ठीक है। लफ्ज अल्हम्दु जैसे आप देख रहे हैं कि ये हम्द जो है वो इसम है और इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, तो वो भी इसकी यानी पहचान भी है अलिफ लाम का लगना। और तो अलिफ लाम के लगने से जो नाउन होता है, जो इसम होता है, उसके अंदर मारिफत आ जाती है, और मारिफत से मुराद यहाँ पर डेफिनेटनेस है, ठीक है, यानी डेफिनेट नाउन बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है कॉमन नाउन की बजाय, या इनडेफिनेट नाउन की बजाय कॉमन ये डेफिनेट बन जाता है। और लिल्ला ही, देखिए लिल्ला ही में एक चीज आपको ये बता दूं, पहले भी शायद कभी डिस्कस हुई थी कि ये जो लफ्ज लिल्ला लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिल्ला क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको अल्लाह क्यों नहीं पढ़ रहा? तो इसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि अगर अलिफ लगा हुआ हो अल्लाह के नाम से पहले, ठीक है, तो उसको अल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, और अगर अलिफ ना लगा हुआ हो ना तो उसको अल्लाह नहीं पढ़ सकते, बल्कि उसको लिल्लाह पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये एक छोटा सा फर्क है, बारीक सा फर्क है, लेकिन अगर आपको ये फर्क ना पता हो ना तो आप इबारत पढ़ने में भी गलती कर सकते हैं, और उस गलती से जो है ना बड़ी संगीन गलती रूनुमा हो सकती है, ठीक है। उसका एक छोटा सा वाकया भी बताता चलूं कि एक दफा याजिज हज के सफर पर था, और उस जमाने में एक्चुअली अमेरिका से ही आया था, तो हमारे ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे। तो एक इजिप्शियन भाई थे, बहुत अच्छे माशाल्लाह दीनदार थे, बहुत यानी नेक आदमी था वो बंदा। तो मेरे हाथ में जो है वो यही किताब थी, ज़ादत तालिबीन, ठीक है, जिसकी शरह से हम पढ़ रहे हैं। तो ज़ादत तालिबीन, और वो पूरा और अरबी की थी ज़ादत तालिबीन, ठीक है, शरह नहीं थी, वो मतन ही था। तो मैं उसको ऐसी बरगर्दानी कर रहा था, बिकॉज मुझे याद पड़ता है कि उस जमाने में मैं शायद पहले साल का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। तो ज़ादत तालिबीन जब उसने मेरे हाथ में देखी, और वो अरबी में ही थी, तो वो जो इजिप्शियन भाई थे ना, उन्होंने मुझसे मांगी कि क्या मैं आपसे बोरो कर सकता हूँ, कैन आई रीड दिस। मैंने उनको दे दी खुशी खुशी, हाँ भी पढ़े। तो वो पढ़ने लगा, थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आता है और कहता है कि ये किताब जो है ना, ये किसने लिखी है? तो मैंने बताया कि भाई ये मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है इंडिया पाकिस्तान के, और माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, उस जमाने में शायद हयात भी थे हजरत। तो कहने लगा कि अच्छा, तो ये जो हदीस है ना, तो इस हदीस का मतलब तो बड़ा गलत है, ये जो यानी इसने बड़ी यानी गलत हदीस लिखी है। तो वो हदीस मुबारक क्या थी? वो हदीस मुबारक है कि मन अहब्बा लिल्लाही, ठीक है, मन अहब्बा लिल्लाही, कि जिसने मोहब्बत करी अल्लाह के लिए, वह मन अबगवा लिल्लाही, और जिसने बुग्ज रखा अल्लाह के लिए, ठीक है, यह आपने भी यकीनन सुनी होगी, राइट। वह मन अता लिल्लाही, वह मन मना लिल्लाही, फकद इस्तकमल अल ईमान, ठीक है, और जिसने दिया किसी को अल्लाह के लिए, और जिसने मना किया किसी से अल्लाह के लिए, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, ठीक है। तो ये हदीस है। तो इस हदीस को ना वो पढ़ किस तरीके से रहा था, वो इस तरह पढ़ रहा था, मन अबगदल्लाह मन अहबल्लाह, कि जिसने मोहब्बत करी अल्लाह से, ठीक है, और वमन अबगदल्लाह, और जिसने बुग्ज रखा अल्लाह से, नऊजुबिल्लाह, ठीक है, और आगे चलता चलिए यह हदीस, तो उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, ठीक है। तो वो इस तरीके से पढ़ा था। अब जाहिर है जब कोई मुसलमान पढ़ेगा कि जिसने अल्लाह से मोहब्बत रखी, तो वो कहेगा हाँ भाई ये बात तो ठीक है, अल्लाह से मोहब्बत करी, लेकिन आगे पढ़े कि जिसने अल्लाह से बुग्ज रखा वो अपने ईमान को मुकम्मल कर लेगा, तो ये तो गोया के हदीस के अंदर तहरीफ है, बहुत ही मुनाफी चीज है, ये तो कुफर है, राइट। तो वो इस तरह से पढ़ा था, लेकिन वो क्यों इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से इस तरीके से पढ़ रहा था उसके जहन से या तो कोई यानी बात निकल गई होगी, या हो सकता है उसको पता ही ना हो ये बात, ठीक है, कि अल्लाह और लिल्लाह में क्या फर्क है। आई थिंक उसके पढ़ने में उसे मिस्टेक हो गई थी खाली, तो जाहिर सी बात है अरब था, इजिप्शियन था, तो उसको ये बात तो पता होगी, लेकिन वो गलती यही कर रहा था कि लिल्लाह को जो है ना अल्लाह पढ़ रहा था। तो जाहिर है जब अबगदा लिल्लाही को वो अबगदल्लाह पढ़ेगा तो मानी तो कुफर के बन जाएंगे ना, कहाँ ईमान के मानी और कहाँ कुफर के मानी। अल्लाह के लिए बगुज रखना किसी के साथ, ये तो ईमान की कामिल होने की दलील है, और अबगदल्लाह अल्लाह से बगुज रखना तो ये तो कुफर की दलील है। ठीक है, सुहेल साहब कह रहे हैं कि अगर कोई उलमा के बारे में बदगुमानी की बातें कर रहे हैं ऑफिस एनवायरमेंट में या कोई गैदरिंग में, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का इंसान है। वो अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिससे कि आप बात कर सकते हैं तो उसको नसीहत कर देनी चाहिए, उसको समझा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा बंदा नहीं है कि जिससे कि आप नसीहत की बात करना मुनासिब समझते हो, तो उसके फिर मुंह नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, फिर वो यानी ना तो उन्होंने आपकी उसकी बात यानी उसने आपकी बात सुननी है, और उल्टा उसने आपके लिए बहुत बड़ा फितना बन जाना है, तो उसके लिए दुआ कर देनी चाहिए या उसको यानी दरगुजारी करना चाहिए। उल्टा ऐसे लोगों के मुंह लगने से जो है ना, ये इनकी गंदगी जो है ना वो और बढ़ी जाती है खाली, और आप कुछ कर भी नहीं सकते, स्पेशली ऑफिस एनवायरमेंट में आप नहीं कर सकते। तो अपने मुल्क में तो चलो भाई थोड़ा हम लोग जरा अपने जरा गुस्सा भी दिखा देते हैं, लेकिन स्पेशली दूसरे मुल्कों में तो अल्लाह ताला ने हमारा हिसाब किया हुआ है ना, ठीक है, क्या हुआ है कि जो कुछ करोगे तो फिर पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, तो इस किस्म की फिर वो बर्दाश्त का इम्तिहान होता है हमारा। उस वक्त उलमाए हक का डिफेंड करना चाहिए या खामोशी अख्तियार करनी चाहिए? ठीक है, तो जवाब दे दिया कि उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, बंदा मदद बंदा बंदा देख करके बात करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की टोपी नहीं पहन लेनी चाहिए, खुदाई फौजदार का डायरेक्ट हवालदार इश्तियाक अहमद की नॉवल में होता था। अच्छा, तशरी फरमाते हैं कि तमाम अस्कार में बेहतर जिक्र कलमा तौहीद है। इस हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह को सबसे अफजल बताया गया है। इसकी वजह यह है कि इसी कलमे से इंसान ईमान की हदूद में दाखिल होता है, और यही कलमा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का पहला सबक था, ठीक है, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो हर नबी ने यही पैगाम दिया। अच्छा, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस में कलमा तौहीद को सबसे अफजल जिक्र फरमाया गया, क्योंकि यही कलमा दीन की बुनियाद है और दीन की चक्की इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है, क्योंकि यही बुनियाद है, इसी से इंसान मुसलमान होता है, यही तौहीद का पैगाम है, और पूरा दीन जो है वो तौहीद के गिर्द ही घूमता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो तौहीद के बाद ही आती हैं दीन के अंदर। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस कलमे को अफजल जिक्र इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये कलमा जाहिरी और बातनी सफाई के लिए बहुत ही मुअस्सर है। इसकी वजह ये बयान करते हैं कि जब बंदा ला इलाहा कहता है तो उससे तमाम माबूदों की नफी हो जाती है, और जब इल्लल्लाह कहता है तो एक माबूद माबूद हकीकी यानी अल्लाह का इकरार होता है, और इस इकरार से उसका कल्ब व बातिन रोशन हो जाता है, और बातिन का असर जाहिरी आज़ा पर भी मुरतब होता है, ठीक है, यानी कल्ब जो है जो कि उसकी बातनी हकीकत है उसकी रूह यानी, तो जब वो रोशन हो जाता है तो फिर उसका असर जो है वो जाहिरी अदा पर भी होता है। तो अब इससे वही आमाल व अफआल सादिर होंगे जो इस कलमे का तकाजा और मंशा है, ठीक है, वही आमाल व अफआल सादिर होंगे जो इस कलमे का तकाजा और मंशा है। तो जैसे कि अभी डिस्कशन भी सुभान अल्लाह यही चली थी कि वइज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, कि जब ये कल्ब जो है वो साले हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, तो फिर सारे जिस्म के अमाल भी सेहतमंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जहन में जो जरा फिक्र रखते हैं, फिक्र करते हैं इन चीजों के ऊपर, सोचते हैं, तो फिर उनके जहन में ना एक सवाल पैदा होता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जवाब तो उसका है, लेकिन फिर बहुत लंबी डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है। वो सवाल क्या है कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी जुबान के अंदर चिकन एंड द एग प्रॉब्लम, सही है, चिकन एंड द एग, तो वो क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या होता है, चिकन एंड द एग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जी पहले चिकन आया कि पहले एग आया, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, राइट, अंडे से मुर्गी निकली या मुर्गी से अंडा निकला, तो इब्तिदा कहाँ से होगी, यानी पहले आप जिक्र करेंगे फिर आपका कल्ब साफ होगा, और फिर कल्ब साफ होगा तो फिर आपके आमाल साफ होंगे। ठीक है, तो भाई कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। ठीक है, तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम ना, ये एक सोचने समझने वाले तालिबे हक के जहन में ये सवाल आता है, बल्कि आना चाहिए। ठीक है, खैर फिलहाल हम इसकी तशरीह मुकम्मल करते हैं। वैसे तो मैं इसकी जवाब ऑलरेडी आपको दे भी चुका हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोशिश करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग वगैरह चला करके गाड़ी में सुन लें, उसको समझने की कोशिश करें। तो इसका जवाब जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एक्चुअली इस क्लास के अंदर। तमाम दुआओं में बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, करीम की सना का मतलब सवाल ही होता है। ठीक है, करीम कौन है? अल्लाह ताला की जात को करीम कहते हैं। ठीक है, तो करीम की सना का मतलब ये कि उसकी तारीफ बयान करना, उसके हम बयान करना, उसके पाकीज़गी बयान करना, ये सब जो है ना वो करीम की सना कहलाती है। ठीक है, तो करीम की जब सना की जाती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? सवाल ही होता है, गोया कि आप उससे उसकी नेमतें मांग रहे हैं। ठीक है, सवाल कर रहे हैं। जब इंसान किसी की तारीफ करता है तो मतलब सवाल करना ही होता है। ठीक है, क्या मतलब? पुराने जमाने में खास तौर पे ऐसा होता था, आज भी कुछ ट्रेडिशंस में, कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि जब बादशाह सलामत के पास जाते हैं ना, तो बादशाह सलामत से ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बल्कि जा करके ना बादशाह की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब थोड़ी देर तारीफें होती हैं ना, तो बादशाह को खुद समझ में आ जाता है कि ये चाहता क्या है। ठीक है, तो फिर बादशाह जो है ना वो उसको अपने खजाने में से चीजें निकाल निकाल करके उसको देता है, देना शुरू कर देता है, उसको इनामात से नवाजना शुरू कर देता है। ठीक है, यही जो है वो दरअसल शोरा भी यही काम करते हैं, जो कसीदे लिखते हैं। ठीक है, वो कसीदे क्यों लिखते हैं भाई? उनको अपना पेट पालना होता है, वो उनको कोई बादशाह से मोहब्बत नहीं होती है। ठीक है, या बादशाह से जो है वो कोई उनको यानी ऐसे नहीं होता कि रात को उनको बड़े ख्वाब में जो है बादशाह का ख्याल आया था, तो उन्होंने कसीदा लिखा, बादशाह को सुना करके वो अपने दिल को ठंडा करना चाहते हैं। नहीं, वो क्यों आखिर वे कसीदे लिखते हैं? क्योंकि कसीदे के जवाब में बादशाह साहब जो है ना उनको नवाजेंगे। ठीक है, तो यह जाहिर है अल्लाह ताला के साथ तो ऐसा मामला नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह ताला की हम्द जो है ना, तो उससे बेसिकली बंदे की जरूरियात भी पूरी होती हैं। और अगर वो मोहब्बत करने वाला बंदा हो अल्लाह ताला से, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला, जाहिर अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं। बादशाह सलामत तो कसीदा खान के दिल का हाल नहीं जानते ना, वो तो ऊपर ऊपर से देख रहे होते हैं कि ये कैसा शेर लिख करके आया, लिख कर लाया है मेरी तारीफ में। लेकिन बादशाह तो दिल का यानी अल्लाह ताला तो दिल का भी हाल जानते हैं। तो जैसे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उसके मुताबिक मजीद नवाजते हैं बंदे को। तो गोया कि सना करना, तारीफ करना जो है ना, ये सवाल ही करना होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, या इसकी वजह यह है कि जो अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई कि जब इंसान मुनआम हकीकी यानी हकीकी इनाम देने वाला, ठीक है, यानी अल्लाह ताला की हमदो तारीफ करता है, तो सिर्फ इसी तारीफ करने से ही अल्लाह ताला मजीद इनामात की बारिश फरमाते हैं। जैसे कि कुरान में भी इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, कि तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गई है तशरीह। अब इसमें भी बहुत सारे नुकात हैं, तो चंद तो आपके सामने रखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो एक तो बात ये जहन में आती है कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु फरमाया, यानी सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाला या बेहतर जो जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये है कि जी बाकी अस्कार करने की जरूरत नहीं है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाकी अस्कार की नफी कर रहे हैं, बाकी दुआओं की नफी कर रहे हैं? तो जाहिर है इसका जवाब जो है वो साफ जाहिर है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरी हदीसों के अंदर ना दूसरे अस्कार की भी फजीलतें बयान हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे अस्कार की, बहुत सारी अल्लाह ताला के जिक्र की फजीलतें बयान हुई हैं। ठीक है, तो बाकी की नफी मुराद नहीं है यहाँ पर, बल्कि इस तरह से बयान कर रहे हैं कि ये जो है ना वो ज्यादा बेहतर जिक्र है। ठीक है, तो अब इससे जो है वो होता क्या है कि इंसान बेसिकली इस कलमे को, ठीक है, एक तो कलमे तौहीद कहा जाता है, और दूसरा एक लफ्ज है इस कलमे के लिए जो कि मशायख के यहाँ ज्यादा मुस्तमल होता है, वो कहलाता है कलमे तहलील। ठीक है, तहलील, और ये इसमें हाँ जो है ना वो बड़ी हाँ नहीं बल्कि कहते हैं, तो कल मैं तहलील भी कहते हैं। और इस कलमे के बारे में ये फरमाया कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कलमा जो होता है वो सफाई के काम आता है। ठीक है, तो सफाई क्या करता है, ये जो गैरुल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह ताला के गैर, अल्लाह ताला के अलावा जितनी चीजें हैं ना, वो सब क्या कहलाती हैं, वो अल्लाह ताला का गैर है। ठीक है, यानी एवरीथिंग अदर देन अल्लाह। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं उनकी अगर दिल के अंदर मोहब्बत आ जाए, ठीक है, दिल के अंदर उनकी अजमत आ जाए, दिल के अंदर उनकी रग़बत आ जाए, दिल के अंदर उनकी ऐसी तलब आ जाए कि जो कि इंसान को अल्लाह से गाफिल करने लगे, ठीक है, तो ये जो है ना, ये गंदगी होती है, ये चीजें जो होती हैं फिर गंदगी बन जाती हैं, जो कि हमारे दिल को नजिस कर रही होती हैं, गंदा कर रही होती हैं। ठीक है, तो इंसान जो है वो, उसको अल्लाह ताला ने क्या सिखलाया अपने नबी के जरिए से, कि तुम इस कलमे का जिक्र करो। ठीक है, इस कलमे को जो है ना, तुम जब पढ़ोगे ना, अपनी जुबान से अदा करोगे और अपने जहन के अंदर इसका इस्तेहजार भी रखोगे, ठीक है, कि इसका मानी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ठीक है, तो जब तुम इसका विर्द करोगे, बार बार इसको अपनी जुबान से अदा करोगे और जहन के अंदर भी इसका ध्यान रखोगे, तो इसके नतीजे में जो है ना, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे दिल से इस गंदगियों को दूर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि दिल, जैसे कि अभी बात हो चुकी है, दिल तो अल्लाह के हाथ में होता है ना, तो अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है। ठीक है, युकल्लिबुहा कैफा यशा, ठीक है, वो जैसे उसको चाहता है फेर देता है। जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ भी तो करते हैं ना, सर्रफ कुलूबना अला ताअतिक, राइट, या मुकल्लिबल कुलूब सर्रफ कुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों को फेर देने वाले, हमारे दिल को अपनी अताअत के ऊपर फेर दे। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और फेरने का काम अल्लाह ताला फरमाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दुआ करना, ये भी एक अमल है जो कि हम करते हैं। ठीक है, यानी हमारा नफ्स, हमारा वजूद करता है और अल्लाह ताला इसके नतीजे में फिर हमें उसका नतीजा अता फरमाते हैं कि हमारे दिल को फेर देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि दुआ के साथ जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी किया जाए। ठीक है, तो इस जिक्र से हम गोया के सफाई कर रहे होते हैं, या सफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं सफाई करने की। ठीक है, सफाई तो अल्लाह ही ने करनी होती है हमारे दिल की, क्योंकि दिल के हुक्मरानी अल्लाह ताला के पास है, लेकिन हम जो है ना, वो अपने ही गोया कहते हैं ना, हमारे यहाँ कार्रवाई डाल रहे होते हैं। ठीक है, यानी जिसको होता है ना कि करना कराना कुछ नहीं है, बस कार्रवाई दिखा रहा होता है एक मैनेजर के सामने। ठीक है, असल काम तो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, ये जो है कार्रवाई डाल रहा होता है, कह रहा होता है यार हम, मैंने ये भी किया, मैं, यानी लुक बिजी डू नथिंग, कहते हैं ना दफ्तरों के अंदर, लुक बिजी डू नथिंग। ठीक है, तो हम भी असल में जो है ना, वो यही कर रहे होते हैं, वी आर लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। ठीक है, करना तो अल्लाह नहीं होता है, तो ऑल वी आर डूइंग इज लुकिंग बिजी इन अल्लाह, आपकी अताअत के अंदर बस हम मसरूफ हैं। ठीक है, हम बस लगे हुए हैं अपने तौर पर जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, बस हम अपने तौर पर आपको कार्रवाई डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा दीजिए। ठीक है, तो झाड़ू फेरना भी इसको कहते हैं, गैर अल्लाह की नफी करना कहते हैं। तो मशायख भी जो अपने मुतवस्सिलीन को, अपने सालिकीन को जो अस्कार बताते हैं ना, तो उन अस्कार के अंदर ये तहलील वाला जिक्र भी शामिल होता है। हत्ता कि जो हमारा सिलसिला सिलसिला ये नक्शबंदी सिलसिला जो है, तो उसके अंदर जो मशायख ने अस्कार की एक तरतीब जो है वो मेंटेन रखी है, जिसको कि वो अपने सालिकीन को सिखाते हैं, तो उसके अंदर बाकायदा असबाक बनाए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो असबाक हैं, इनके अंदर से फर्स्ट सेवन जो असबाक होते हैं वो तो यानी अल्लाह ताला के नाम के जिक्र के असबाक कहलाते हैं, इस्मुल्लाह के जिक्र के असबाक कहलाते हैं। और उसके बाद जो आठवां और नवा सबक होता है ना, वो दोनों सबक तहलील के सबक होते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी तफसील है, जाहिर है इस क्लास के अंदर उस सब तो बयान नहीं हो सकती, लेकिन बताने का खाली मकसद ये था कि मशायख जो तज़किया नफ्स की मेहनत अपने सालिकीन को सिखलाते हैं, उनसे करवाते हैं, तो उसके अंदर जो जिक्र बताना होता है ना, ये दवा होता है, तो उस जिक्र के अंदर ये तहलील वाला जिक्र भी शामिल होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बड़ी यानी इफेक्टिवनेस होती है इंसान के तज़किया नफ्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, और उसके बाद है बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, तो इसकी कुछ तशरीह तो हमने ऑलरेडी पढ़ी जो यहाँ लिखी हुई थी। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, का जो लफ्ज है ना, तो इसकी तशरीह वैसे तो अमूमी तौर पर जब सूरह फातिहा की तफसीर की जाती है तो उसके अंदर खास तौर पर लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी तफसील बयान की जाती है। ठीक है, तो जाहिर है वो तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह में इतना बताते चलें कि इस लफ्ज हम्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम्द जो है वो तारीफ करना, ठीक है, इसके मानी में इस्तेमाल होता है। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं शुक्र करना। ठीक है, तो हम जो है ना यूजुअली इन दोनों चीजों को एक ही मानी का समझते हैं। तो जब भी होता है ना कि कोई अच्छा काम हो गया हमारे साथ, तो हम जो है वो अल्हम्द भी बोलते हैं और हम जो है वो शुक्रुल्लाह भी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं, शुक्रुल्लाह भी बोलते हैं। तो भाई हम्द और शुक्र के दरमियान फर्क क्या है फिर, या कोई फर्क नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, इन दोनों के दरमियान फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है? फर्क यह है कि शुक्र जो चीज होती है ना, यानी शुक्र का जो अमल आप करते हैं ना, तो ये किसी नेमत के जवाब में होता है। यानी कोई चीज आपको मिली ना, अब उसके जवाब में आप, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना थैंक यू, उर्दू में कहते हैं शुक्रिया, बिल्कुल इसी तरीके से अरबी में, और उर्दू में भी अरबी से ही तो आया, तो शुक्रिया का लफ्ज कहना। तो शुक्रिया का लफ्ज आप कैसे कहते हैं? जब आप देखते हैं कोई चीज मिली आपको किसी से, तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, लेकिन तारीफ करना जो है ना, तो तारीफ के लिए कुछ मिलना जरूरी नहीं है, बगैर मिले भी सिर्फ उसकी सिफात की वजह से, उसकी बड़ाई की वजह से, उसके दीगर एहसानात जो कि आपके ऊपर पहले कभी हुए थे या होते चले जा रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से ना आप किसी शख्सियत की तारीफ बयान करते हैं। ठीक है, तो तारीफ का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए कोई चीज आपको उस वक्त मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये मेजर फर्क हो गया हम्द और शुक्र के दरमियान। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम्द के लफ्ज को जो अल्लाह ताला लेकर आते हैं ना, जैसे सूरह फातिहा की इब्तिदा है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला इसको अलिफ लाम के साथ लेकर के आते हैं। तो अलिफ लाम के साथ होने में भी बड़ी तफसील है। ठीक है, तो उसके मुख्तसर यानी खुलासा ये है कि अलिफ लाम जो होता है अरबी जुबान के अंदर, ये वैसे तो तारीफ के लिए होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जो है ना वो चार किस्में होती हैं, चार किस्में होती हैं अलिफ लाम की। ठीक है, अलिफ लाम जिंसी एक होती है, एक अलिफ लाम इस्तिग़राकी होती है, एक अलिफ लाम अहदे ज़हनी होता है, और एक एक होता है अलिफ लाम अहदे खारजी। ठीक है, अब ये चार क्या होती हैं, इन चारों के तफसील में अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बता दूं कि एक जो अलिफ लाम की किस्म होती है ना वो इस्तिग़राकी होती है। ठीक है, इस्तिग़राक का मतलब ये होता है कि गर्क का लफ्ज उससे निकला ये इस्तिग़राक। गर्क का मतलब क्या होता है? डूब जाना। ठीक है, गर्क हो जाना, किसी चीज में सिंक हो जाना। तो अलिफ लाम इस्तिग़राकी अगर इसको कंसिडर किया जाए, ठीक है, मुफस्सरीन ने इस तरह से इसके ऊपर डिस्कशन करी है कि अलहम्द के ऊपर जो अलिफ लाम लगा हुआ है, अगर इसको अलिफ लाम इस्तिग़राकी कंसिडर किया जाए, तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? इसका तर्जुमा यह बनेगा कि जो भी तारीफ की जाती है, जो भी तारीफ इस दुनिया के अंदर कभी भी की गई, किसी की भी की गई, किसी की भी की गई, और कभी भी की जाएगी, किसी की भी की जाएगी, ठीक है, या प्रेजेंट के अंदर किसी की भी की जा रही है, ये सारी की सारी तारीफ जो है ये अल्लाह ताला ही की तारीफ होती है। यानी कि ये सारी की सारी तारीफें जो है ना अल्लाह की तारीफ के अंदर डूबी हुई हैं। यानी एक अल्लाह की तारीफ है एक समंदर की मानिंद, और बाकी जितनी भी तारीफें आप किसी की भी करते हैं, ठीक है, वो सारी जो है ना वो इस समंदर के अंदर ही गर्क है। ठीक है, वो क्यों? इसलिए कि आप किसी की तारीफ करते हैं उसके हुस्न की वजह से, आप उसकी तारीफ करते हैं उसकी सलाहियतों की वजह से, आप उसकी तारीफ करते हैं उसकी किसी कामयाबी की वजह से, ठीक है, या इस किस्म की किसी और बात की वजह से आप उसकी तारीफ करते हैं ना, तो भाई ये सारी चीजें जो उसके अंदर होती है ना, हुस्न हो, कामयाबी उसको मिली हो, या उसके अंदर कोई सलाहियत मिली हो, उसके अंदर सलाहियत हो, ये कहाँ से आई उसके पास? ये सब की सब उसको अल्लाह ताला ने तो दी है। तो आप दरअसल उसकी तारीफ नहीं कर रहे, हकीकत में तो आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं ना। हत्ता कि जब आप किसी के नेकी की तारीफ करते हैं, हमारे मशायख तो यहां तक हमें सिखाते हैं कि अगर कोई तुम्हारी नेकी की तारीफ करे तो तुम उसके ऊपर फूले ना समाओ, بلکہ اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے اللہ نے تمہاری برائیاں اس کی نگاہ سے چھپا دی ہیں، اس وجہ سے وہ تمہاری اس نیکی کی تعریف کر رہا ہے. اگر تمہاری برائیاں اس شخص کے اوپر کھول دینا تو وہ شخص کبھی بھی تمہاری نیکی کی تعریف نہ کرے. تو ہماری نیکی کی بھی اگر کوئی تعریف کرتا ہے نا، پارسائی کی کبھی کوئی تعریف کرتا ہے نا، تو یہ بھی اللہ کی ستاری ہی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، دراصل اللہ کی ستاری کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الف لام استغراقی اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو یہ اس کا مفہوم بنے گا. دوسری پاسبلٹی جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ الف لام جنسی ہے. ٹھیک ہے، جنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حمد کی ہر جنس، ٹھیک ہے، حمد کی جو ہر جنس ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے. یعنی جب بھی آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، جو بھی تعریف ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا کے اندر، وہ ساری کی ساری تعریف جو ہے وہ یعنی کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس تخلیق کے اندر، وہ تعریف کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ مانگا ہوا ہے، مستعار لیا ہوا ہے اللہ تعالی سے. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ٹیمپرری ہے، پرمننٹ تو نہیں ہے نا، ٹیمپرری ہے. اس کی موت سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ تو اس کے پاس اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو تعریف جو ہے نا وہ تو اللہ ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہی جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے، اور کوئی بھی تعریف کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خیر اس طریقے سے علماء جو ہے وہ بہت تفصیل میں جاتے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی یعنی بظاہر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بے انتہا ڈیپتھ ہوتی ہے. اس کے اندر علماء کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ ان کا ذہن ان چیزوں میں چلتا ہے، اور پھر ان کی باتوں کو وہ سمجھتے ہیں، اور ان کو پھر اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، اور اپنے جو طلباء ہوتے ہیں، فارمل جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پھر ان کو بتاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے بارے میں ضمن میں یہی چند باتیں تھیں. کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سے پوچھئے، 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں کلاس ختم ہونے میں. کوئی سوال اس حدیث کے الفاظ، معنی، مفہوم، یا اوور آل جو یہ کانسیپٹ ہے ذکر دعا وغیرہ کا، یا اینی تھنگ ایلس، آپ اللہ کا تعلق بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ذرا جی وغیرہ کچھ لکھے نا مجھے بتا دے، تو میں ان کا ویٹ کر لوں، ادروائز 5 منٹ میں ہم اگلی حدیث کا ترجمہ کم از کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ آلٹ اے سے سلیکٹ آل کر کے کنٹرول ایکس کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ جی لکھ دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو کنٹرول بھی کر دیں، کاپی یعنی کٹ اینڈ پیسٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا اپنا لکھا ہو. چلیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث جو کہ اس حدیث کے سلسلے کی آخری حدیث سمجھیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے فقہ پر موو ہونا ہے، تو وہ یہ ہے اس کا مضمون کہ خدا کو ہر حال میں یاد رکھنے والے کے فضائل. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 77 ہے یہ روضۃ العالمین کے اعتبار سے، تو اس کی عبارت نیچے لکھی ہوئی ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ٹھیک ہے، کیونکہ ابن عباس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ راوی ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بھی صحابی، اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہما کا لفظ یعنی ضمیر جو ہے وہ ہما کی استعمال کری، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان دونوں سے. قالا، لیکن قالا کا جو فعل ہے یہ صرف عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ضمیر جو ہے وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ صرف انہوں نے ہی فرمایا، دونوں باپ بیٹا نے مل کے نہیں فرمایا تھا. ٹھیک ہے، تو فرمایا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اول من یدعا الی الجنتی یوم القیامتی الذين يحمدون الله في السراء والضراء. ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی و سختی ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے. ठीक है, चाहे उनके ऊपर जो भी हालात आए वो अल्लाह ताला की तारीफ ही करते होंगे। ठीक है, लुगात में सबसे पहले लफ्ज अव्वलू, और अव्वलू का मतलब जैसे उर्दू में भी हम जानते हैं कि द फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो अव्वलू का लफ्ज है वो उसकी जो पोजिशन है ना इस जुमले के अंदर, वो इस तरह से है कि ये अव्वलू का लफ्ज मुदाफ बन रहा है, ठीक है, और बाकी जो जुमला है ना, मन युदअ इलल जन्नति यौमल कियामती, ठीक है, ये पूरा का पूरा जुमला इलल जन्नति यौमल कियामती, ठीक है, यहां तक ये पूरा जुमला इसका मुदाफ इलैही बन रहा है, ठीक है, पूरा जुमला। तो ऐसे भी होता है कि हाँ, तो पूरा जुमला भी जो होता है ना वो मुजाफ इलैही बन जाता है। ये पहले भी एक दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यौमा का लफ्ज भी ना इसी तरीके से आता है कि यौमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर उस यौमा के अंदर जो जो चीजें होती हैं ना वो पूरे जुमले में डिस्कस हो रही होती हैं, और वो पूरा जुमला जो होता है वो यौमा का मुजाफ इलैही बन जाता है। तो यहाँ भी इसी तरीके से हो रहा है। आगे एक्चुअली तरकीब हदीस भी लिखी हुई है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बाद में मौका मिलेगा। तो अव्वलु हो गया जिसका मतलब होता है पहला, मई युदा, तो मन जो है वो तो मन मौसूला है, इसे मौसूला मन इसका तर्जुमा जो से करते हैं, ठीक है, जो। और उसके बाद है युदा, तो युदा जो है ये फेले मुबारे है, ठीक है, फेले मुबारे जिसके अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों के माने आते हैं, ठीक है। अच्छा, फेले मुजारे में से ये सीगा क्या है, तो फिलहाल आपको इतना बता दूं कि ये युदआ है ना, बुलाया जाएगा, तो ये एक्टिव नहीं है बल्कि पैसिव है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि जो बुलाएगा, अगर जो बुलाएगा का फेल इस्तेमाल होता ना तो वो एक्टिव होता है यानी मारूफ, क्योंकि यहाँ पर उसको बुलाया जाएगा तो ये तो मजहूल टेंस है, पैसिव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो पैसिव टेंस हो गया। बाकी इसकी तफसील इतनी सी है कि वाहिद मुदक्कर गायब फेल मुगारे मजहूल, ठीक है, ये इसका कंप्लीट टेंस बन गया, यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक मुदक्कर यानी एक मैस्कुलिन चीज, मर्द या जो भी मैस्कुलिन चीज होती है, और गायब यानी थर्ड पर्सन कि जिस जो बुलाया गया, तो थर्ड पर्सन में बात हो रही है, गायब का सीधा इस्तेमाल हो रहा है। तो वाहिद मुदक्कर गायब फेल, चूंकि फेल है ये, और फेल में से कौन सा फेल है, मुदारे है, माजी नहीं है, अमर नहीं है, नहीं नहीं है, बल्कि मुदारे है और मजहूल है, आखिर में बताते हैं मारूफ है कि मजहूल है, तो ये मजहूल है, ठीक है। समय मैंने कुछ लिख लिया होगा आपके पास। इला, इला हरफ जर होता है, ठीक है, 17 हरूफ जर होते हैं, तो उनमें से एक ही इला है, और इस हर्फ अगर यानी हर्फ जर के बाद जो इसम आता है ना तो वो हालत जर में चला जाता है, तो इस वजह से नेक्स्ट जो इसम आ रहा है इसके बाद वो है अल जन्नती, यानी अल जन्ना, जन्ना जो है वो वैसे तो ये लफ्ज बाग के मानी में आता है, गार्डन, ठीक है, लेकिन जब अलजन्ना का लफ्ज इस्तेमाल आता होता है कुरान हदीस में तो इससे मुराद जो होती है वो वाला गार्डन है जो कि मरने के बाद मिलेगा, ठीक है, जन्नत जिसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इला की वजह से ये जन्नती हो गया, वरना ये अलजन्नतु होता बाई डिफॉल्ट, हालत रफा होती है बाई डिफॉल्ट, तो ये हालत जर है इस वजह से अलजन्नती, ठीक है। अब इसके बाद है यौमल कियामती, तो यौम का मतलब तो दिन होता है, सभी जानते हैं इस बात को, और अल कियामती ये भी सब जानते हैं कि यानी मरने के बाद जो जो वक्त होगा उसको कयामत कहते हैं, ठीक है, जो कायम होगा मामला, तो ये भी जो है मुजाफ मुजाफ इलैही बन रहा है, यौमा मुजाफ और अल कियामती मुजाफ इलैही, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि ये जो यौमल कियामती है ना, ये जो है वो टाइम बता रहा है कि जिसके अंदर ये वाला काम होगा, कौन सा वाला काम, युदआ इलल जन्नती वाला काम, ठीक ठीक है, वो बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ। तो ये जो काम है, जन्नत की तरफ बुलाए जाने वाला काम, ये कब हो रहा, ये कब होगा? यौमल कियामती के अंदर होगा। ठीक है, तो इस वजह से ना यौमल कियामती जो है वो इस काम के लिए जर्फ बन रहा है। जर्फ, बर्तन, कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर ऑफ प्लेस बन रहा है कि टाइम बन रहा है? ऑब्वियसली कंटेनर ऑफ टाइम बन रहा है, इस वजह से इसको कहेंगे जर्फे जमान। ठीक है, यानी इस वक्त में बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ। ठीक है, इसी जर्फ जमान को मफ़ऊल फीही भी कहते हैं। जैसे कि अगले पेज के ऊपर अगर आप देखें ना, दूसरी लाइन में थोड़ा सा आगे चले तो मफ़ऊल फीही ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये चंद बातें आपको यौमुल क़ियामती के बारे में बता दें। एक तो ये कि ये मुजाफ मुजाफ इलैही बन रहा है, ठीक है, दूसरा ये कि ये मुजाफ मुजाफ इलैही बन करके ये मफ़ऊल फीही बन रहा है युदा फ़ेल का, क्योंकि ये युदा फ़ेल जो है ना ये इसके अंदर किया जाएगा यौमुल क़ियामती के अंदर। फी ही मफ़ऊल फी ही, इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद है अल्लज़ीना। तो अल्लज़ीना जो है ये भी इससे मौसूल होता है, इसे मौसूला भी कहते हैं और मौसूल भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह मन आपको बताया था इसे मौसूल होता है, उसी तरीके से अल्लज़ीना भी होता है। अल्लज़ीना जो है ये जमा होता है, इसकी इसका वाहिद जो है वो अल्लज़ी होता है। ठीक है, अल्लज़ी युवस्वसु फिद्दीन, अल्लज़ी युवस्वसु हाँ फिन्नास। ठीक है, तो अल्लज़ी जो जैसे कि कुरान में अक्सर इस्तेमाल होता है, तो उसी की जमा अल्लज़ीना होती है। तो अल्लज़ीना का तर्जुमा वो लोग जो, ठीक है, वो लोग जो, जिसको अंग्रेजी में दोज हु ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यहमदूना यहमदून अल्लाह। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यहमदूना तो फेरे मुजारे है, और इसके बाद चूंकि यहमदून अल्लाह वो हम्द करते हैं अल्लाह की, तो यहाँ पर जरूरी है कि अलिफ भी लगाया जाए ताकि उसको आप अल्लाह पढ़ें, लिल्लाह नहीं पढ़ें। यहमदूना लिल्लाह ही नहीं बल्कि यहमदून अल्लाह, कज अलिफ लगा हुआ है ना अल्लाह के नाम के अंदर। ठीक है, यहमदूना जो है ये फेरे मुजारे का सीगा है। ठीक है, फेरे मुजारे, और इसकी मजीद तफसील जो है वो मेरे ख्याल में अगली क्लास में ही रखते हैं। लेकिन अगली क्लास में एक काम आप ये कीजिएगा कि जो अबदा याबुदू के टेबल्स आप लोगों को पहले भेजे हैं, तो उनको जरा सामने रख लीजिएगा ताकि यहमदूना का पूरा सीगा आप उसके अंदर से लोकेट कर सकें। अबदा याबुदू का जो जो टेबल आप लोगों को पहले भेजे थे, अगर नहीं है किसी के पास तो वो अलग से व्हाट्सएप करके मुझसे मांग लें। ठीक है, तो यह मदूना के बारे में डिस्कशन से हम इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिर इसको मुकम्मल करके तशरीह वगैरह के साथ फिर हम इंशाल्लाह टॉपिक से गुफ्तगू शुरू करेंगे। किसी को कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए। वर्ड खुदा का इस्तेमाल करना अल्लाह के लिए माँ माँ को इश्काल में कोई इश्काल तो नहीं? खुदा जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये फारसी जुबान का लफ्ज है, और खुदा के जो मानी होते हैं ये जनरल होते हैं। ठीक है, ये गोया के फारसी जुबान में माबूद के मानी में इस्तेमाल होता है, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, तो कोई भी खुदा हो सकता है। मुसलमानों का खुदा कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह जो है ना ये है स्पेसिफिक। ठीक है, ये एक इसमें जलाला है, अल्लाह ताला का जाती नाम है। ठीक है, तो हिंदुओं का खुदा कौन है? भाई हिंदुओं के तो पता नहीं करोड़ों खुदा है, सही है, 3 करोड़ खुदा किसी ने कहा था हिंदुओं के होते हैं। तो उसी तरीके से किसी का खुदा जो है वो कोई इंसान होता है, ईसा अलैहि सलाम किसी का खुदा है नहीं, तो ये तो जनरल टर्म है। इसी तरह से अंग्रेजी जुबान में गॉड का भी लफ्ज है। ठीक है, तो आप गॉड का लफ्ज और खुदा का लफ्ज इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी अल्लाह के नाम को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने अमेरिका जैसे कल्चर में ना, जहाँ पे वो गोरों को बहुत खुश करके उनको दावत देने की कोशिश करते हैं, मुसलमान बनाने की कोशिश करते रहते हैं लोग। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन भाई उसके लिए दीन को आप बिगाड़े तो नहीं ना। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया कि जी वो लोग जो है ना ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो लफ्ज गॉड से होते हैं, तो हम जो गॉड ही इस्तेमाल करेंगे हर जगह। अब उन्होंने जहाँ पे अल्लाह इस्तेमाल करना जरूरी भी था या जहाँ पे अल्लाह इस्तेमाल करने के फायदे थे, उनको छोड़कर ये गॉड का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ऐसी हरकतें हम नहीं कर सकते हैं। और कोई ठीक है चलें, अगर और कोई सवाल नहीं है तो मैं आज क्लास खत्म करते हैं। जजाकुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।